SBS रेडियो पर मैं हूं आपके साथ अनीता परार। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर अपना काम कर ही रहा है और अब इसरो का अगला मिशन है सूर्य का अध्ययन करना। और इसके लिए कल शनिवार 2 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 11:50 पर आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है। ये धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। तो CSIRO से जुड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट निखिल गुप्ता के साथ में बात की ये समझने के लिए कि इस मिशन के उद्देश्य क्या हैं, क्या अध्ययन होगा, और इसके साथ ये भी जानना चाहा कि ये L1 क्या है। तो निखिल जी ने बताया।
जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आदित्य L1 में जो L1 है वो बेसिकली एक लैग्रेंजियन L1 पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको समझे तो L1, L2, L3, L4 एंड L5 ये कुछ 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, जो कि स्विस और इटालियन जो मैथमेटिशियंस थे यूलर और लैग्रांजे, इन्होंने लेट 1750s में इन्होंने इनको डिस्कवर किया था एक तरह से, लेकिन थ्री बॉडी प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट्स बेसिकली है क्या कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल सन की है और अर्थ की है, और उसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको हम L1 पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे की चीजें स्टेबली रह सकती हैं। एक तरह से जैसे सन रस्सी से कुछ खींच रहा है और उसी तरह अर्थ रस्सी से उन चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, वो रस्सी बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल है। तो वो कोई भी चीज L1 पॉइंट पे होगी, जो कि कुछ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगी, वहां से हिलेगी। और सिमिलरली ये कुछ L2 पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं वो बेसिकली सिमिलर है, सिमिलर वेरी क्लोज टू L1, बट इट्स ऑपोजिट टू द सन। तो L1 पॉइंट सन की डायरेक्शन में है, L2 पॉइंट उसके ऑपोजिट। तो जो मिशंस L2 पे होते हैं उनका मकसद ये है कि सन की इंटरफेरेंस ना हो, पर जो L1 पे हैं उनका ये है कि उनको सन की स्टडी करनी है, तो इसलिए वो सन की डायरेक्शन में।
जी, तो इसमें क्या क्या अध्ययन होगा?
जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें जो इसरो के पुराने मिशंस हैं उनमें जो डेवलपमेंट की गई थी उनको सन की स्टडी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि 1996 में एक इंडियन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट, जो कि पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट थी इसरो की, फिर एस्ट्रोसैट सैटेलाइट आई जो 2004 से 2015 में जिसको बनाया गया, और ये आदित्य L1 जो 2008 और 2023 में बनाया गया। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो एस्ट्रोसैट में थी वो भी इसमें यूज की जा रही है, जिसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि इमेजिंग के लिए जो यूवी वेवलेंथ में इमेजिंग है, इमेजेस इकट्ठा करने के लिए वो जैसे एस्ट्रोसैट में था एक्सपेरिमेंट, एक सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट जिसमें डाला गया है सन की इमेजिंग करने के लिए, उसकी फोटोग्राफी के लिए और यूवी बैंड में। फिर इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो फ्रिक्वेंसी के साथ कुछ चीजों को स्टडी करेगी, सन की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर जो है उनको स्टडी करने के लिए नैरो ब्रॉडबैंड वेवलेंथ में इमेजिंग करने के लिए इक्विपमेंट है। तो कुल मिलाकर कुछ 7 पेलोड है, 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें सॉफ्ट एक्सरे हार्ड एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो पार्टिकल्स को एनालाइज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें दो चीजों को स्टडी करने के लिए, एक तो हेलियोफिजिक्स है जो जिसको कहा जाता है स्टडी ऑफ सन, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि सन का क्रोनोस्फीयर क्रोमोस्फीयर कैसा है, फोटोस्फीयर कैसा है, हाउ सन प्रोड्यूसेस एनर्जी, और जो भी छोटी छोटी इरप्शंस हो रही हैं सन में उनका क्या मायने है। और दूसरी चीज है स्पेस वेदर, जो आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चली है। बहुत रिसेंटली 2022 में ही जो इरप्शंस होती हैं सन से, जिनको CMEs भी बोला जाता है, कोरोनल मास इजेक्शंस फ्रॉम सन, तो उसके कारण कई बार ही होता है कि इन इरप्शंस के कारण एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं, और ये स्टॉर्म्स बहुत ही खतरनाक हैं, स्पेशली सैटेलाइट्स, जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, GPS सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो जैसे मैं बता रहा था, 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें स्टारलिंक, जो SpaceX की जो इंटरनेट वाली सैटेलाइट्स हैं, कुछ 40 सैटेलाइट्स उसमें खराब हो गई थी, एक ऐसे ही जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो आई थिंक ये सारी चीजों को स्टडी करते रहना और इनके बारे में पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ मेन लक्ष्य है ध्यान के।
तो पिछले जो सैटेलाइट्स गए हैं वहां पर, उनसे किस तरह से ये अलग काम करेगा?
जी बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो L1 एक्सपेरिमेंट है आदित्य,
जी
ये कुछ तीसरा एक्सपेरिमेंट होगा दुनिया भर में जो कि L1 पोजीशन पे जाएगा। और L1 पोजीशन पे जाने का मतलब कि हेलियोफिजिक्स की स्टडी करना, सन की स्टडी करना। इससे पहले नासा के एक्सपेरिमेंट्स और ईसा के, ये जो ये यूरोपियन
जी
स्पेस एजेंसी है, उसके एक्सपेरिमेंट्स जा चुके हैं L1 पे। चाइनीज एक्सपेरिमेंट्स गए हैं 2012 में, पर वो L2 में गए हैं, जो कि आउटर स्पेस की स्टडी है, इट्स नॉट अ स्टडी ऑफ सन। तो इसलिए
अच्छा
L1 पे, ये तीसरा स्पेस एजेंसी है इसरो, जो L1 पे अपना मिशन भेजेगा। और इससे पहले नासा के काफी मिशंस जा चुके हैं, जैसे इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर हो गया, ACE मिशन था, डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी थी। तो ये 1970 से ये चलते आ रहे हैं ये मिशंस।
जी
लेकिन जो आदित्य L1 मिशन है, इसमें कुछ मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट जो दो नोवेलिटीज हैं, जो नई चीज ये करेगा,
जी
उनमें ये है कि ये पहली बार होगा कि हम सोलर डिस्क की यूवी रेडिएशंस में उसकी इमेजिंग करेंगे। तो यूवी बैंड में बिल्कुल ही अलग दिखेगा, और उसको रिजोल्व करके उसकी स्टडी करने से हमें हेलियोफिजिक्स के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी।
जी
और सेकंड आई थिंक इम्पोर्टेंट नोवेलिटी है जो वो स्पेस वेदर के फॉर्म में है, कि इसमें एक ऑन बोर्ड जो पेलोड है वो ऑनलाइन इंटेलिजेंस और डिटेक्शन ऑफ CMEs, जो कि इरप्शंस है सन की,
जी
उनको वो स्टडी करेगा और फटाफट कैलकुलेट करके जल्दी से वो सिग्नल भेज देगा कि सूरज से कुछ इरप्शंस आ रही हैं,
हाँ
तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि वो हमारी बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे इसरो की जी सैट सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशंस के लिए, उनको कुछ नुकसान ना पहुंचे। तो अगर हम ये जानकारी इरप्शंस के हमारे तक पहुंचने से पहले, थोड़ी देर पहले हम पता कर लें, तो हम कुछ ना कुछ मेजर्स ले सकते हैं उन सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को बचाने के लिए। तो ये
जी
सब चीजें आदित्य L1 है जो एक्स्ट्रा करने जा रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस नासा मिशन।
यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाह रही हूँ, तो ये वहां पर कितने समय तक रहने वाला है?
जी बिल्कुल। तो क्योंकि ये लग्रांजे पॉइंट पे है, एक बैलेंस जगह पे है, तो इसको इतना फ्यूल नहीं चाहिए, जितना भी फ्यूल चाहिए वो यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए चाहिए। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सोलर पैनल्स के द्वारा किए जा सकते हैं, तो कुछ अनुमानित है कि ये 5 साल तक रहेगा। तो क्योंकि एस्ट्रोसैट का भी अनुमान था कि 5 साल तक काम करेगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, पर हम देख रहे हैं कि अब 7 साल से ऊपर हो चुके हैं और एस्ट्रोसैट अभी तक काम कर रहा है, तो हो सकता है ये
हाँ,
5 साल
तो
से ऊपर जाए,
ये भी रहे
लेकिन
तो।
मिनिमम जो टाइम है वो 5 साल तक।
और आखिर में ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में भी आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कोलाबोरेशंस वगैरह भी हैं, तो यहाँ के बारे में क्या कहें?
जी बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो
जी
इंटरफेरोमीटर है जिसका बजट कुछ 2 बिलियन डॉलर के अराउंड है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में अब लगने जा रहा है और ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे मुरशीजन रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप पर्थ से 700 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएं तो
जी
एक रीजन है जो रेडियो क्वाइट रीजन है, वहाँ पे एस कैप और MWA जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। और क्योंकि ये रेडियो टेलीस्कोप्स हैं तो ये किसी भी वेदर में सन की स्टडी भी कर सकते हैं। और इन टेलीस्कोप्स की खासियत है कि रेडियो रिजीम में आप मैग्नेटिक फील्ड्स को बड़े अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो जैसे ही जो ये CMEs जो कोरोनल इजेक्शंस होती हैं सन से या बाकी इरप्शंस होती हैं,
जी
तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्टडी के लिए रेडियो रिजीम बहुत ही एक अच्छा एक माध्यम है जिसके जरिए बड़े अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड का पता किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के पास है, हम मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम पे हम भी ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं कि जिससे हम भी बहुत ही जल्दी पता कर लें कि कब कोई कोरोनल इजेक्शन होने वाला है और कब तक वो अर्थ के पास पहुंचेगा, और उसे कौन कौन सी सैटेलाइट है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रही है और उसको कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है।
जी, तो इसके ऊपर तो हमें थोड़ा विस्तार में चर्चा करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम किसी अगले कार्यक्रम में उसकी चर्चा करें। और अभी ये जो आपने आदित्य L1 की जानकारी दी है, बहुत ही तकनीकी जानकारी है, कुछ समझने की कोशिश की है हमने, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी।
जी अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।